ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज रात श्रीहरिकोटा से दो उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इन उपग्रहों के जरिए कक्षा में अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जाएगा। प्रक्षेपण यान PSLV-C60 दोनों उपग्रहों SDX-1 और SDX-2 को 476 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा। टारगेट और चेजर दोनों उपग्रहों को 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ही कक्षा में स्थापित किया जाएगा। स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग प्रयोग की सफलता के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जिसके पास उपग्रह को निर्धारित कक्षा में पहुंचाकर उसे स्थिर रखने की क्षमता होगी। भविष्य में भारत चंद्रमा या अन्य ग्रह को गगनयान पहुंचाने के लिए ये टेक्नोलॉजी मददगार होगी। रक्षा मंत्रालय ने आज 2,867 करोड़ रुपए के दो समझौते किए। ये समझौते रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपुलेशन प्लग के निर्माण और इसे भारतीय पनडुब्बियों तथा कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों पर इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो से जोड़ने के लिए किए गए हैं। दोनों अनुबंधों पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बजट पूर्व परामर्श के अंतर्गत छठी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय के सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले आज ही वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने 2025 में भारत के आर्थिक परिदृश्य के बारे में आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया है। दिसंबर 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में श्री मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति घटने की उम्मीद है जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और रिजर्व बैंक को आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने आज वलसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमंद राजचंद्र मिशन के वार्षिक समारोह के समापन अनुष्ठान महामस्तकाभिषेक में भाग लिया। श्री शाह आज दोपहर अहमदाबाद से धर्मपुर पहुंचे और इस धार्मिक समारोह में भाग लिया। समारोह में गुजरात के वित्त और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से कतर की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अल सानी के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों को राजनीतिक, व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा। इसके अलावा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के उद्देश्य से भारत नेपाल सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण कल से रूपंदेही के सलझंडी में शुरू हो रहा है। सूर्य किरण नामक बटालियन स्तर का संयुक्त सैन्य अभ्यास, जंगल युद्ध, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद का मुकाबला, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार शांति मिशन की स्थापना, आपदा प्रबंधन और राहत जुटाने में मानवीय सहायता, आंतरिक क्षमता निर्माण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। इथियोपिया में यात्रियों से भरे ट्रक के नदी में गिर जाने से 71 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 68 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। ये दुर्घटना कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से लगभग 300 किलोमीटर दूर सिदामा राज्य में हुई। सरकारी समाचार संस्थान इथियोपियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने बताया कि ट्रक में सवार सभी लोग विवाह समारोह में जा रहे थे। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कल ठंड और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल शीतलहर चलने की संभावना है। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों में कोहरे और कम दृश्यता के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।